बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 17 अक्टूबर दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। हाल ही में कई जाने माने महत्वपूर्ण साहित्यकारों ने खुद को मिले सम्मान लौटाए हैं। इसकी शुरुआत उदय प्रकाश ने कन्नड़ विचारक कलबुर्गी की हत्या के विरोध में साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा कर की। उसके बाद नयन तारा सहगल ने दादरी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया, पुरस्कार लौटाया। इसके बाद तो सम्मान लौटाने की झड़ी ही लग गई। कई लोग इस तरह पुरस्कार लौटाए जाने का विरोध कर रहे हैं और साहित्यकारों की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पुरस्कार लौटाना ही विरोध जताने का एकमात्र तरीका है? यही है बहस का विषय। अपनी राय रखें, मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। दिल्ली में शुक्रवार को दो नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। 2.5 साल और 5 साल की बच्चियों के साथ हुई इन अलग अलग घटनाओं के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है, सुरक्षा देने में दिल्ली पुलिस पूरी तरह नाकाम रही है, प्रधानमंत्री और उनके राज्यपाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल ने कहा है कि पुलिस का नियंत्रण साल भर के लिए दिल्ली सरकार को दे दिया जाए, अगर उस बीच हालात नहीं बदलते हैं तो फैसला वापस ले लिया जाए। फिलहाल दोनों बच्चियों का इलाज अस्पताल में जारी है। इसराइली सुरक्षा कर्मियों ने कहा है कि फलस्तीनियों और इसराइलियों के बीच हिंसा की अलग अलग घटनाओं में आज 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। मारे जाने वालों में एक महिला भी शामिल है। पिछले एक महीने में हुई हिंसा में अब तक करीब 8 इसराइली और 30 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसराइल और फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में हालिया हिंसा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, बेगुनाह लोगों के साथ हो रही हिंसा की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमें विश्वास है कि इसराइल को अधिकार है कि वह अपने देश में कानून व्यवस्था कायम करते हुए अपने नागरिकों को चाकू के हमले से बचाए और सड़कों पर हो रही हिंसा पर भी रोक लगाए। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। शरणार्थियों का पहला दल आज क्रोएशिया की सीमा से होते हुए स्लोवानिया पहुंचा। आ रहे प्रवासियों को देखते हुए स्लोवानिया ने सीमा पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी है। बढ़ते प्रवासी संकट को देखते हुए हंगरी ने शुक्रवार की रात को अपने देश और क्रोएशिया के बीच की सीमा को बंद कर दिया था। हंगरी का कहना है कि यूरोपियन यूनियन के नेताओं की वार्ता के अनुसार प्रवासियों को ग्रीस पहुंचने से रोकने के लिए सेना न भेजने पर उसे क्रोएशिया के साथ सटे अपने देश की सीमा को बंद करना पड़ा है। हंगरी का कहना है कि वह स्लोवानिया से सटी अपनी सीमाएं भी बंद कर सकता है। इस साल करीब 6 लाख प्रवासी समुद्र के रास्ते से होते हुए यूरोपियन यूनियन पहुंच चुके हैं। सीरियाई सेना ने कथित तौर पर देश के सबसे बड़े शहर अलेपो के पास एक अहम गांव अल हुआजिनाह पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना के हवाई हमलों और समर्थक सेनाओं की मदद से सीरिया ने देश के दक्षिण में विद्रोही लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। ताइवान की सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी पार्टी ने जनवरी में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार चुंग श्यू जू का नाम वापस ले लिया है। एक आपातकालीन बैठक में पार्टी के सदस्यों ने ओपिनियन पोल में आए बार बार खराब रेटिंग के चलते चुंग श्यू जू का नाम वापस ले लिया। बोत्सवाना की एक अदालत ने फैसला दिया है कि इरिट्रिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के 10 सदस्यों के शरणार्थी आवेदन पत्र पर विचार होने तक उन्हें देश में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
तो स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आप जान ही चुके हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें भी खुल चुकी हैं। नंबर एक बार आपके लिए फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1800-102-7001। मेरे सामने स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ जनसत्ता के पूर्व संपादक वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि क्या विरोध करने का एकमात्र तरीका यही पुरस्कार वापस करके है?
नहीं, एक तरीका तो ये नहीं है। लेखक लिखता है, उसका तरीका अलग है, लेकिन कभी कभी इतिहास में ऐसे मौके आते हैं, दुर्भाग्य से देश ऐसे ही मौके से गुजर रहा है, जब आपको दूसरे तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। और अभी लेखकों ने ये जो तरीका अपनाया है, क्योंकि एक के बाद एक जब हत्याएं होने लगीं तो लगा कि नहीं, अभी आप ये कहें किसी लेखक से उम्मीद करें कि वो पहले कोई कविता में अपनी बात कहेगा या लेख लिख करके अपनी बात जाहिर करेगा, इस तरह से आप हत्याओं के बारे में अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, खासकर उस वक्त जब वो संस्था जो लेखकों की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, अगर वो भी मौन धारण करके बैठे तो लेखकों को उसको जगाने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ता है जो उन्होंने अपनाया है।
आप ये कहना चाहते हैं कि विरोध का तरीका पुरस्कार लौटाना है?
हमेशा नहीं है, लेकिन कभी ऐसे मौके आते हैं जब वो भी अपनाना पड़ता है और अपनाया जा रहा है।
कार्यक्रम में सीधे हम शामिल कर रहे हैं वरिष्ठ कवि, समकालीन हिंदी कविता के मंगलेश डबराल जी को, जिनको की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 2000 में हम जो देखते हैं कि इस रचना के लिए सम्मानित किया गया, मंगलेश डबराल ने अपना साहित्य अकादमी सम्मान लौटा दिया। मंगलेश जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कार्यक्रम में शामिल हैं। मंगलेश जी, आपने सम्मान क्यों लौटाया? आपको भी लगा कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, मोदी सरकार के तंत्र में ऐसा हो रहा है और अब अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन रही है?
जी हाँ, इस समय मुझे लगता है कि हमारा देश एक ऐसे इस तरह के मोड़ पर है जहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, धर्म निरपेक्षता के लिए और हमारी जो सामाजिक संस्कृति का जो ताना बाना है उसके लिए काफी खतरा उपस्थित हो गया है।
जी जी, मैं सवाल यही सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2001 में आपकी जो कृति थी हम जो देखते हैं उसको नवाजा गया, आपको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया और इसके इस पूरे वर्षों के अंतराल में बहुत मौके आए जब धर्मनिरपेक्षता खतरे में आई, यही वक्त क्यों?
देखिए, ये जिसको कहते हैं गुणात्मक रूप से ये फर्क है इस रूप में कि लगातार ये सिलसिला चल रहा है। लगभग पिछले एक वर्ष से अगर आप संघ परिवार के नेताओं, मंत्रियों, संतों, साध्वियों और इसके मंत्रियों के बयानों को देखें तो वो अभिव्यक्ति, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के इतने विरोधी हैं, वो जो उनसे सहमत नहीं हैं उनको पाकिस्तान चले जाने का और या ये उनको हरामजादे हैं वो ये कहने का साहस दिखा रहे हैं और इस तरह की भाषा जो लोकतंत्र में कभी नहीं बोली जाती। सोचिए,
लेकिन लोकतंत्र पर सबसे बड़ा कुठाराघात, और ये सवाल मैं ओम थानवी जी आपसे भी पूछूंगा, सबसे बड़ा कुठाराघात तो आपातकाल में हुआ था जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही छीन ली गई थी और तब जो है ना समाचार पत्रों पर प्रतिबंध था, सब पे प्रतिबंध था, तब तो इस तरह का कोई भी, और ये भाजपा ही भी यही सवाल पूछ रहे हैं।
देखिए, आपातकाल के दौरान बहुत बड़ी संख्या में, या तो उन लोगों को पता नहीं है या वो जानबूझकर इस तथ्य को छिपा रहे हैं कि आपातकाल के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लेखक और बुद्धिजीवी जेल गए, जिनमें से कई मेरे मित्र हैं और कईयों ने अपने अलंकरण वापस किए, रेणु जी ने पद्मश्री वापस किया, बाबा नागार्जुन ने अपना अपनी फेलोशिप लौटाई। इसके अलावा मेरे बहुत से मित्र आपातकाल के दौरान जेल में रहे और आपातकाल विरोधी रचनाएं भी हमारे यहाँ बहुत लिखी गई। तो ये नहीं कह सकते हैं कि आपने तब क्यों नहीं लौटाया। दूसरी बात ये कि ये कोई अजीब तर्क नहीं है कि तब आपने क्यों नहीं लौटाया। तब ये था कि इस देश में फासिज्म का खतरा, इस देश में अभिव्यक्ति का गला घोंटा गया, इमरजेंसी लगाई गई जो कि बहुत बड़ी घटना है और जिसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन एक गुणात्मक रूप से एक अल्पसंख्यक वर्ग को निशाने पर बनाते हुए, मुस्लिमों, ईसाइयों को निशाने पर रखते हुए, उन्हें तरह तरह से अपमानित करते हुए, कभी धमकियों के बल पे।
मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। मैं कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल करना चाहता हूँ जी। नाम बताएं और कहाँ से आप बोल रहे हैं?
जी, मैं सौरभ झा बोल रहा हूँ, सीतामढ़ी बिहार से।
सौरभ झा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए।
जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं लेकिन उसके बाद आप यह नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर हिंसा पे या कुछ भी जो घटना हुई उस पर उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया। कल को मेरे यहाँ चोरी हो जाती है, मैं अगर प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट करूं कि वो बोले, अपनी राय दे, तो यह सही नहीं है, क्योंकि अगर वह चुप है इसका मतलब यह नहीं कि वह इस घटना को प्रोत्साहन दे रहे हैं। दूसरी बात, आप अगर सरकार का दिया हुआ अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं, इसका मतलब आप सरकार का अपमान कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का पूरा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारे जनता जनार्दन है उन्होंने वोट दिया है, उस सरकार को वोट दिया है, और उस सरकार का आप अपमान कर रहे हैं बस अपना लाइमलाइट में आने के लिए, मीडिया में चर्चा बनाने के लिए आप ये अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं।
जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मंगलेश जी, आपने ये हमारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सीधे प्रसारण में सुन रहे हैं, इनके तथ्यों का, इनके तर्कों का क्या जवाब है आपके?
देखिए सौरभ जी, अगर अगर जो है नरेंद्र अबोलकर, पान छरे और एमएम कलबुर्गी जैसे विद्वानों की हत्या को जो है, हत्या वो भी निर्मम हत्या को, अगर अगर घर में चोरी की घटना से जोड़ रहे हैं तो मैं इस पर एक हैरत ही व्यक्त कर सकता हूँ। और अगर आप मोहम्मद इखलाक की एक जो है बीफ खाने की नितांत झूठी अफवाह के आधार पर अगर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इसको अगर अगर चोरी से जो इसकी तुलना अगर चोरी से कर रहे हैं तो ये बहुत हैरतनाक तुलना है। तो और इन घटनाओं पर, ये घटनाएं क्योंकि उन लोगों के द्वारा अंजाम दी जा रही हैं जो कि संघ परिवार से संबंध रखते हैं और जिस परिवार के एक सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए इस देश के प्रधानमंत्री हैं।
जी ओम थानवी साहब,
मेरा ये कहना है कि सौरभ शायद ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि केवल एक प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं है, इतना बड़ा देश है, प्रजातांत्रिक देश है, आज़ाद मुल्क है, उसके प्रधानमंत्री जो हैं वो सात समंदर पार जा कर के लोगों को बताते हैं, एक दीवार पर लिख कर आते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा अगर हमारा सबसे बड़ा दायित्व है इस देश में,
अरे तो मोदी जी खुद जाके थोड़ी दंगे करवा रहे हैं या फिर खुद जाके लोगों को थोड़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इस तरह के काम कीजिए।
हाँ, लेकिन मोदी जी जिस विचारधारा से आते हैं उनके विचारधारा से वो लोग दूर नहीं हैं, बल्कि उसी विचारधारा के लोग हैं, यही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मोदी जी से ज़्यादा आशा की जाती है कि चूँकि अब आप अहिंसा में भरोसा करते हैं, हम कह रहे हैं आप पिछला अतीत छोड़िए, आप इमरजेंसी की बात कर रहे थे, मेरा मानना है कि इमरजेंसी में लेखकों को अधिक मुखर होना चाहिए था, या लेखक संगठन हैं उन्होंने समर्थन किया इंदिरा गांधी की, इमरजेंसी का नहीं करना चाहिए था, पर अब कब तक हम लोग जो है, अगर पहले गलती की अब हमको इसका अधिकार नहीं रह गया कि अब हम अपना विरोध करें, ये तो तर्क नहीं बनता है। तो मोदी जी की अहिंसा में पहले दिलचस्पी नहीं थी, इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अब उन्होंने जब कहा कि हाँ अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, तो जब लौट के आए और दादरी में,
लेकिन माफ़ी तो मांग ली ना उन्होंने
बहुत बाद में, उन्होंने पहले बिहार चुनाव में 11 दिन बाद ये कहा कि राष्ट्रपति की सुनिए, देखिए राष्ट्रपति क्या कहते हैं, तो चुनाव राष्ट्रपति ने नहीं लड़ा था ना, उन्होंने शपथ ली थी देश चलाने की, देश आप चला रहे हैं, आप अपने मुँह से कहिए, आपकी बात का अधिकार और दम वो ज़्यादा है क्योंकि सरकार आपके हाथ में है। तो वो उन्होंने जो जिस ढंग से कहा वो बात इसलिए फिक्र की बात होती है कि बचने की चेष्टा कर रहे हैं। उसके बाद में जो गुलाम अली का मामला हुआ, किसी का मुंह काला करने की घटना हुई, उनके अपने पार्टी से जुड़े हुए सज्जन थे, लेखक जो हैं वो बार बार जब इतना इस्तीफों की झड़ी लगा दी तब उन्होंने फिर इसमें कहा कि इसमें हमारा क्या दोष बनता है। तो मेरे ख्याल में जो रवैया है उस रवैये को संभालने की चेष्टा ही नहीं करते, वो मानने को तैयार नहीं, बार बार एक बात कहते हैं कि अगर घटना उत्तर प्रदेश में घटी तो वहाँ सरकार दूसरी है।
लेकिन उसमें गलत क्या बात है, मतलब वो बात सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की घटना है, उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ, श्रोता बहुत देर
नहीं,
से
नहीं, नहीं एक पंक्ति में बोल दूँ, मेरा कहना ये है कि ये बात टालने के लिए कही जाती है। अगर महाराष्ट्र में कुछ हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, आप ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार वहाँ पे नहीं है, महाराष्ट्र में तो है, कर्नाटक में नहीं है। मेरा कहना सरकार ये कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये एक मानसिकता का मामला है, एक खास विचार पद्धति का मामला है जिसके चलते हुए ये हादसे हो रहे हैं।
एक कार्यक्रम में श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी बात रखें आप।
हेलो
जी, नाम बताएं।
जी मेरा नाम इंद्रजीत कुमार सिंह, मैं बिहार डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
इंद्रजीत जी अपनी बात रखें आप।
सर मेरा कहना यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कि हमारे वो क्या कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया था और उसी संविधान के आधार पर हमारा देश आजादी के बाद अब तक चल रहा है। तो साहित्यकारों ने इस तरह के सम्मान अगर लौटाए हैं तो वो सिर्फ सरकार का ही नहीं, देश की 125 करोड़ जनता और हमारे संविधान का अपमान किया है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में एक श्रोता को सीधे और शामिल कर लेते हैं। जी नाम बताएं। पहले श्रोता जो इंद्रजीत हैं वो कह रहे हैं कि संविधान का अपमान किया है, देश की जनता का अपमान किया है। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
हेलो
जी, नाम बताएं।
मेरा नाम शमीम अख्तर है, ब्रह्मपुर पूर्णिया बिहार से बोल रहे हैं।
हाँ शमीम साहब, अपनी राय रखें आप।
जी मेरा कहना ये है कि इन हालात में जब लोग परेशान हो जाएं और उसका जो है किसी तरह से ध्यान नहीं रखा जाए, तो ऐसे हालात में जो है लोग अगर इन सम्मानों को वापस ही करते हैं तो कौन सा बुरा करते हैं।
दो आवाज़ें हमें सुनाई दी, एक देश का संविधान का अपमान की बात कर रहे हैं और दूसरा कह रहे हैं कि भाई अगर विरोध कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। सीधे मैं फिर से एक बार चल रहा हूँ मंगलेश जी के पास। मंगलेश जी, जो हमारे पहले श्रोता थे इंद्रजीत जी, उन्होंने एक बात कही कि देश की जो एक इतनी बड़ी जनता है और इस जनता की चुनी हुई सरकार है, उस संविधान के तहत आप उसका भी अपमान कर रहे हैं।
देखिए, ये संविधान का अपमान नहीं है बल्कि संविधान की रक्षा करने की कोशिश है। ये संविधान में जो हमको गारंटियां दी हैं संविधान ने, उसमें संविधान ने जो हमको अधिकार दिए हैं और जो लोकतांत्रिक मूल्य दिए हैं, समानता का जो अधिकार दिया है, ये उन अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश है लेखकों का ये कदम।
हमारे पास बहुत सारी फेसबुक पर टिप्पणियां हैं। एक हैं उदय सिंह जी, ये कहते हैं इन्होंने लौटाया कुछ भी नहीं है, ना ही लौटा सकते हैं। इन्हीं पुरस्कारों के बलबूते आप लोगों की पुस्तकें बिकती हैं, आज भी बिक रही हैं, उसी पर छपा हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, कई मंचों पर स्थान मिलता है और चुने हुए प्रतिनिधि, जब आप सम्मानित होते हैं तो सम्मान लेना तो अच्छी बात है लेकिन लौटाना कतई गलत बात है।
देखिए, ये तो बात यह है कि साहित्य अकादमी जो है 3 वर्ष के बाद किसी पुस्तक को विचारार्थ अपने पास लेती है, यानी उस पर जो है पुरस्कार देने के लिए विचार तब किया जाता है जब उसको जब प्रकाशित हुए 3 वर्ष बीत जाते हैं। यानी वो तब तक ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि तब तक क्या उस किताब ने अपनी कोई जगह बनाई है या नहीं, और अकादमी उन्हीं किताबों को पुरस्कार के लिए विचारार्थ
रखा जाता है
अकादमी में, जो अपनी एक पहचान बना चुके हों
जी।
तो ये कहना कि साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत होकर के लेखकों ने यश कमाया है और ये कमाया, तो ये बात तो ये आधी सच है। हो सकता है अकादमी पुरस्कार मिलने के बाद उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी हो, तो इसमें ये क्या अस्वाभाविक है, इसमें तो कोई अस्वाभाविक क्या, प्रतिष्ठा नहीं बढ़नी चाहिए।
जी जी, मंगलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपका यहाँ पर हम धन्यवाद करेंगे। ये जो हमारे मैं एक फेसबुक टिप्पणी पढ़ रहा था, इसमें एक टिप्पणी और मैं पढ़ना चाहूँगा। ये टिप्पणी है एक चैतन्य भारत के नाम से, एक टिप्पणी है, ज़्यादा नाम ना हुआ तो पुरस्कार लौटाकर मीडिया में आ गए। क्या कहेंगे ओम थानवी साहब, मतलब मीडिया में, और कई इस तरह की टिप्पणियाँ हैं
असल में
कि मीडिया में आप आने के लिए इस तरह का काम हुआ है। जितने लोग आपको सम्मानित होने के बाद नहीं जानते थे वो अब जानने लगे हैं, क्योंकि लंबी फेहरिस्त है और एक लगा है कि भीड़ चाल चल दी है।
असल में क्या है कि लोगों में खेमेबंदी हो जाती है, अगर कुछ लोगों को लगता है कि वो समर्थक हैं एक खास विचारधारा के और ये हमला उस विचारधारा के ऊपर है, इस पुरस्कार लौटाने का जो सिलसिला है, तो किसी भी तरीके से आप उनको गाली दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उनको दीवार की तरफ धकेल सकते हैं। इतने बड़े बड़े लेखक, उनको क्या प्रचार की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में सारी दुनिया में उनको बुलाया जाता है, मंगलेश जी अमेरिका जाके आते हैं, यूरोप जाके आते हैं, इतनी जगहों पर वो गए हैं, ये कोई पुरस्कार लौटाने की घटना तो आज घटी है। उसमें भी कई लेखकों ने कई दिन लगाया है सोच करके कि हम इसमें जाएं कि न जाएं, और कुछ लेखकों ने अभी नहीं भी लौटाया है, हालांकि वो जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ है, जैसे विनोद कुमार।
लेकिन उनका जो तरीका है वो कहते हैं कि पुरस्कार जरूरी नहीं है लौटाना, विरोध का तरीका
ठीक है। ये मैंने कहा कि कई लोगों ने कई दिन सोच के लौटाया, उनको भी वक्त लगा, कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं, उनको लगता है कि ठीक नहीं है। लेकिन मेरा कहना ये कि ये तो दो अलग अलग इसमें मतभेद हो सकता है। इसमें क्या कोई मतभेद रखता है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसा माहौल बन गया, कोई गा न सके, कोई बोल न सके, कोई लिख न सके, और लिखने वाले की गर्दन काट दी जाए, बोलने वाले का जवान काट दी जाए। तो ये जो परिवेश आज़ादी का, ये तर्क देना कि हम आज़ाद हैं संविधान की बात है, अरे संविधान ने तो आपको ये आज़ादी दी है। फैज ने कहा था कि बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, और आज भी अगर कोई बोलता नहीं है और बोलने वाले को जो लोग कहते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि ये उन फासिस्ट लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने पहले ही बोलने वालों के मुंह बंद किए हैं, और उसकी रक्षा के लिए जब आज लोग एकजुट हो गए, जो मैंने कहा इतिहास में ऐसे मौके कम आते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि क्यों लोग मजबूर हो गए अपने पुरस्कार, वो अपना पैसा भी लौटा रहे हैं। एक लाख रुपया कई लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है, कोई आसान नहीं होता अपनी जेब से निकाल करके लौटा के देना।
थानवी साहब, कार्यक्रम में हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं राजस्थान के साहित्यकार नंद भारद्वाज को, जिन्होंने एक साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाया। लेकिन उससे पहले कि हम उनके पास जाएं और उनसे उनका कारण पूछें, कार्यक्रम में दो श्रोताओं को शामिल कर लेते हैं एक के बाद एक। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं। हेलो,
डोलू खान बोल रहा हूं, गांव
बिंदास। माफ कीजिएगा, नाम नहीं सुन पाए।
डोलू खान बोल रहा हूं, गांव बिंदासर, जिला बाड़मेर, राजस्थान से।
अच्छा जी, जी अपनी राय रखें आप।
हमारा इसी बात पर यही कहना है, अगर ज्यादा से ज्यादा और कुछ ना हो पाए, जो साहित्यकार जो अपना पुरस्कार लौटा रहे हैं वो तो सही बात है, कम से कम इस बात का यह तो खुलासा हो सकता है, अगर ये लड़ाई कर सकते हैं तो ये लड़ाई सही है। अगर जैसे दादरी का मामला अभी हुआ है, यहाँ पर मोदी जी बिल्कुल चुप्पी मार कर बैठे हैं, यहाँ पर अगर चुप रहने की बात नहीं है, कम से कम वो अपना बयान तो दे सकते हैं इस पर।
नहीं नहीं, उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने खेद जताया है, खेद भी जताया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान से हमारे श्रोता थे और राजस्थान के ही साहित्यकार हैं नंद भारद्वाज, उनके पास कार्यक्रम में शामिल करते हैं। 2004 में उनका राजस्थानी उपन्यास सामही खुलतौ मार्ग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपने क्यों लौटाया नंद भारद्वाज जी?
देखिए, लौटाने के पीछे कोई निजी कारण या व्यक्तिगत राग द्वेष की बात नहीं है, एक समझ बनी है सारे साहित्यकारों के बीच में कि जिस तरह देश में माहौल बन रहा है, जिस तरह से लेखकों की हत्या हो रही है, खासतौर से कलबुर्गी जी के साथ जो हुआ उसके बाद से ये तकलीफ हम लोगों के बीच में काफी बढ़ गई, और हमें लगा कि कोई लेखक को सुरक्षा देने वाली व्यवस्था है नहीं, बल्कि जिस तरह से नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई या पांचरे साहब गए, उसी क्रम में ऐसा व्यक्ति जो साहित्य अकेदमी की बॉडी का मेंबर है और साहित्य अकेदमी ने उसकी हत्या पर कोई बहुत संजीदगी से प्रतिक्रिया भी नहीं दी, कोई शोक सभा भी नहीं थी, बल्कि जो शोक सभा करना चाहते थे उनको भी इज्जत नहीं दी, ये हम सबके लिए तकलीफ की बात थी।
लेकिन तरीका हमने, जी भारद्वाज जी, तरीका तो और भी हो सकता था कुछ,
जो देखिए तरीके बहुत से हैं, तो ये तरीका है, इसे भी तो मान्यता दीजिए, इसमें क्या तकलीफ है, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी किया है, और ये एक अहिंसक और सत्याग्रह का तरीका है, इसमें किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस पर इस तरह से रिएक्ट किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है।
लेकिन कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि भेड़ चाल में सारे साहित्यकार आ गए,
समझ है, इसमें मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, भेड़ चाल है या गाय चाल है, ये चालू शब्दावली है, इसका कोई अर्थ नहीं।
एक मेरे पास श्रोता है, उनका नाम है प्रवीण कुमार शर्मा, और उन्होंने फेसबुक पर एक टिप्पणी की, देश में और भी गंभीर मुद्दे हैं, उन्हें उठाइए और लिखने वाले 99% जी जी, किसानों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे हैं, अगर इन सब मुद्दों पर भी पुरस्कार या सम्मान लौटाए जाते तो शायद और बड़ी बात होती।
देखिए ये तो खैर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, और सामान्य घटनाएं होती हैं, इवन जो दादरी में जो हुआ उस पर भी बहुत शार्प प्रतिक्रिया दी है, और हम तो तमाम तरह की जो जनता के साथ नाइंसाफियां हो रही है, हम सबका खिलाफत करते हैं
जी,
ये होना नहीं चाहिए
जी। एक कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं और उसके बाद ओम थानवी जी आपके पास प्रतिक्रिया लेंगे। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
जी मेरा नाम रोहित कुमार कौरव है और मैं जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
रोहित कुमार जी मध्य प्रदेश से, आज हमारे पास बिहार से लोग आए, राजस्थान से आए और अब मध्य प्रदेश की बारी है। जी अपनी राय रखें आप।
जी जी सर, मेरा मानना है कि यह विरोध प्रदर्शन का एकमात्र तरीका तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ यह एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन अवश्य है। एक तरफ तो सरकार जहाँ पर सर मतलब IPR कानून लाने की बात कर रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको मतलब पूरा फुल फॉर्म है उसका, और दूसरी तरफ वो कहती है कि ये मीडिया में आने के लिए ये जो विचारक हैं वो अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं। तो सर मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि वो मीडिया में आने के लिए पुरस्कार लौटा रहे हैं, क्योंकि वो पहले ख्याति प्राप्त हो चुके हैं, उसके बाद ही आपने उनको पुरस्कृत किया है।
जी जी बहुत जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पुरस्कार लौटाने से कोई समस्या हल नहीं होगी ओम थानवी साहब?
देखिए नरसिंहपुर से जो सज्जन बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात, मुझे अच्छा लगा, और खासकर ये वहाँ से
कायदे का मुद्दा उठाया
और वहाँ से बोल रहे थे जहाँ से हमारे बहुत बड़े कवि भवानी प्रसाद मिश्र आते हैं, उनका जन्म वहीं पर हुआ था। तो ये जो बात है कि ये प्रतीकात्मक बात है, और दूसरा आप किसानों की जो बात कर रहे थे, मेरा कहना यह है कि इस प्रतिरोध में वो सारी चीजें शामिल हैं।
नहीं तो फिर सिर्फ सिर्फ आतंकवाद का मुद्दा या चरमपंथ का मुद्दा ही क्यों सामने आ रहा है? कुलबर्गी की हत्या, ये तो समझ में आता है, दादरी कांड जुड़ गया, उसके बाद बहुत सारे कांड जुड़ते जा रहे हैं, अब अभिव्यक्ति की आज़ादी भी जुड़ गई उसमें।
होता क्या है कि जो चीज़ें समाज में मानते हैं कि आज़ाद मुल्क में नहीं होनी चाहिए, वो जब होती हैं, किसानों की हत्या की बात आपने कही,
गरीबों के मुद्दे, महिला के आरक्षण के मुद्दे, अभी आज हमने खबर में, बल्कि हमारे प्रोग्राम की हेडलाइन थी, दो बच्चियों के साथ ऐसी वारदात हुई निर्भया कांड के बाद, ये मुद्दे कहीं और ज्यादा बड़े मुद्दे नहीं है।
आप स्मरण कीजिए, मैंने शुरू में ही कहा कि इस्तीफा देना ये कोई तरीका उपाय नहीं है, लेखक का काम है लिखना, लेखक अभिव्यक्ति देता है किसानों की आवाज, गरीबों की आवाज, जिसकी भी आवाज उसको लगता है कि मेरी लेखनी में से निकलनी चाहिए, लेकिन ऐसे मौके इतिहास में कभी कभी आते हैं जब उसको लगता है कि मुझे अब सड़क पर आना चाहिए या मुझे पुरस्कार लौटाना चाहिए, तो उसके पीछे एक लंबा इतिहास चला आता है। ये सारी अन्याय की घटनाएं जो हैं देखते सुनते हुए, लेकिन अंत में जब लगे कि लेखक ही मारा जा रहा है और उसके लिए जिनको बोलना चाहिए वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, संस्थाएं पंगू हो रही हैं, एक एक कर सारी संस्थाओं पे ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जो नितांत अयोग्य लोग हैं, उन क्षेत्रों के लोग नहीं हैं, तब लोगों को लगता है कि हमें अपनी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, जो बिल्कुल ऊपर तक सर्वोच्च जो सत्ता का शिखर है वहाँ तक सुनाई दे कि हमारा देश का लेखक जो है वो एक हुआ है, और मेरे ख्याल में इसमें वो सफल रहे हैं।
जी, कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं और उसके बाद मैं वापस राजस्थान चलूंगा। जी, नाम अपना बताएं और शायद टेलीफोन लाइन हमारी कट गई है, हैं हमारे साथ हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
हाँ नमस्कार।
नमस्कार, नाम बताइए।
हाँ मैं राजेश पाल बोल रहा हूँ, धनबाद झारखंड से।
धनबाद झारखंड से एक राज्य और जुड़ गया, झारखंड। जी अपनी राय रखिए।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पुरस्कार लौटा रहे हैं सारे कम्युनिस्ट और कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, और मेरा ये मानना है कि सिर्फ पुरस्कार लौटाना से कुछ नहीं होगा, अगर आपको सही ढंग से आप लौटाना चाहते हैं तो जो चेक मिलता है 1,00,000 करके उसको भी लौटाना चाहिए था कि वो किसी विकास कार्य में आ जाएगा।
वो भी लौटा रहे हैं लेखक, वो भी लौटा रहे हैं, लेकिन जो आपने बात कही उसको हम रखते हैं अपने दोनों अतिथियों के सामने।
और ये जो है कि आपने कह रहा कि आपने कहा कि लौटाया, ये तो मैं देख रहा हूँ कुछ 4-5 ही लौटाए हैं, लेकिन
नहीं लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, लेकिन आपने एक बड़ी मुद्दे की बात उठाई, बहुत बहुत शुक्रिया। समय बहुत कम है हमारे पास। जी नंद भारद्वाज जी, एक अच्छा हमारे पास नहीं है नंद भारद्वाज जी का संपर्क कट गया है। ओम थानवी साहब, सवाल यही है कि पुरस्कार, इन्होंने कहा कि जो लौट आ रहे हैं वो साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं और वो लोग हैं जो कि वैचारिक तौर पर एकदम अलग हैं। दम तो है,
साम्यवादी विचारधारा प्रतिबंधित नहीं है, कांग्रेसी विचारधारा प्रतिबंधित नहीं है, अलग मेरा दोनों विचारधाराओं से ताल्लुक नहीं, ना मैं पुरस्कार पाने या लौटाने वालों में हूं, लेकिन मैं उनका
लेकिन आप एक ऐसे जरूर आप एक ऐसे संपादक रहे हैं जिन्होंने आपने इन सबको छापा है,
और मैं अभी इनका समर्थन भी करता हूं। मैं मानता हूं कि इन्होंने एक उचित फैसला किया है, और किसी भी अगर जो सज्जन बोल रहे हैं उनकी भी कोई विचारधारा होगी, और अक्सर यही होता है कि हम दूसरे की विचारधारा को हमेशा मान के चलते हैं कि गलत है, ये जो एक असहिष्णुता है इसी को लेकर के तो सारा झगड़ा चल रहा।
जी लेकिन थानवी साहब, जो मैं जिस मुद्दे की बात मैं कर रहा था कि तमाम मुद्दे आते हैं, क्या आप वो कह रहे हैं कि एक इतिहास बदल रहा है, एक समय आ गया, ये वाकई समय आ गया है कि एक के बाद एक झड़ी लग रही है और पुरस्कार वापस हो रहे हैं, और शायद लेखकों के इतिहास में या हिंदुस्तान के इतिहास में ये जो समय है ये लिखा जाएगा?
देखिए, जब इमरजेंसी लगी थी, जो कि देश में हम मान के चलते हैं और ये सरकार भी मानती है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मौका था, लेकिन इमरजेंसी घोषित हुई और हमारे अधिकार घोषणा के बाद छीन लिए गए। अभी जो परिवेश है उसमें कोई घोषणा नहीं है, और फिर भी अगर अधिकार छीने जाते हैं तो मेरे ख्याल में लेखक अगर चिंतित नहीं होगा तो कौन चिंतित होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया ओम थानवी साहब, और उन तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जो कि हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए, जो नहीं बन पाए उनसे हम माफ़ी चाहते हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से।
बीबीसी समाचार। दिल्ली में शुक्रवार को दो नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाओं के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है, प्रधानमंत्री और उनके राज्यपाल क्या कर रहे हैं। इसराइली सुरक्षाकर्मियों ने कहा है कि फिलिस्तीनियों और इसराइलियों के बीच हिंसा की अलग अलग घटनाओं में आज 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। हंगरी और क्रोएशिया के बीच सीमा बंद होने के बाद शरणार्थियों का पहला दल क्रोएशिया की सीमा से होते हुए आज स्लोवानिया पहुंचा। सीरियाई सेना ने कथित तौर पर अलेपो शहर के पास एक अहम गांव अल हुआजिना पर कब्जा कर लिया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा के इस अंक में बस इतना ही। 9:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक आपसे हम एक बार फिर से मुखातिब होने वाले हैं। तब तक मोहनलाल शर्मा को अजीत सारथी और हेमंत कुशवाहा के साथ विदा दें। नमस्कार।